ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद 12वां अध्याय। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक संख्या 13। षट्त्रिंशत् वर्ष सहस्रम् शशास क्षितिमण्डलम् भोग हि पुण्यक्षयम् कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम्। हद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे सत्ययुग में विद्यमान थे, क्योंकि सत्ययुग में ही लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक और द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। इस कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य 2 तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पुण्य करने से उच्च सुखोपभोग मिल सकता है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि न तो भोग में रहती है न दुख पाने में। जब वह श्री संपन्न होता है तो यही जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण कर रहा हूं, और जब दुख में होता है तो यही जानता है कि मैं अपने अपवित्र कार्यों, पापों का क्षय कर रहा हूं। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, यह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहिता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से निर्बाध होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्या करता है तथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज ने इस अपने लोक का राज्य 36,000 वर्षों तक किया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि वो सत्ययुग में विद्यमान थे, क्योंकि केवल सत्ययुग में ही लोगों की जीवन की अवधि इतनी लंबी हुआ करती थी। सत्ययुग में लोगों के जीवन की अवधि 1,00,000 वर्ष तक हुआ करती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग में अधिकतम जीवन की अवधि लोगों की 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष भी आजकल लोग मुश्किल से जीते हैं, और आजकल के परिस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ही 100 साल तक जिएगा, क्योंकि आजकल इतनी तकलीफ होती है। पहले तो लोग 80 साल की उम्र तक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखते थे, 90 साल तक भी हट्टे खट्टे रहते थे। आजकल भी गांव में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, तो आजकल भी इस उम्र के लोग अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में और खास करके जो शहर में रहते हैं, 30-40 साल की उम्र से ही हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है और नाना प्रकार के बीमारियां, रोग आने लगते हैं। तो जैसे जैसे अभी कलयुग बीतता रहेगा, वैसे वैसे लोग जल्दी बूढ़े होते जाएंगे। और बताया जाता है कि जब कलयुग बहुत आगे बढ़ जाएगा तो 20-30 साल का भी व्यक्ति बहुत वृद्ध प्रतीत होगा और लगेगा कि कितना बूढ़ा है। आजकल भी एक बीमारी है, बीमारी का नाम शायद डॉक्टर कोई बता सकते हैं, जिससे एक 10 साल का बच्चा भी 90 साल के आदमी की तरह लगता है उस बीमारी की वजह से, जिसमें शरीर में जो सेल्स होते हैं उनका विकास इतनी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। इसलिए 10 साल में उसका शारीरिक विकास 90 साल के आदमी की तरह हो जाता है, 5 साल की उम्र में वो 40 साल के आदमी की तरह उसका शरीर हो जाता है। मन वैसा ही रहता है, मन मतलब बुद्धि इतना मैच्योर परिपक्व नहीं होता, लेकिन शरीर केवल इतना कमजोर हो जाता है, मन बच्चे का ही रहता है। तो ऐसे भी एक घटना हुई थी, ये बीमारी एक जू धर्म के एक रबाई थे, उनके जो पादरे होते हैं उनके लड़के के साथ में ऐसा हुआ। 12 साल का लड़का था लेकिन 90 साल के आदमी की तरह उसका शरीर हो गया था, लेकिन मन तो बच्चे का था, खेलकूद करने की इच्छा थी उसको। तो ये जू धर्म का पादरी इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया कि सोचने लगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे बच्चे के साथ में क्या हुआ। पहली बात तो ये है कि मेरे बच्चे का क्या कसूर था, ये तो मासूम लड़का है, बच्चा है, इसने कोई पाप नहीं किए हैं, तो इसको ऐसा जीवन क्यों मिला, जबकि 12 साल की उम्र में 90 साल के आदमी की तरह लगता है वो। और दूसरी बात, मैं तो भगवान की ही सेवा में लगा हुआ हूं, मैं तो एक पादरी हूं, मैंने भी कोई पाप नहीं किए हैं, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पुत्र की हालत की दशा ऐसी हुई। इसका मतलब ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर सर्वशक्तिमान हैं भी, इसका मतलब है कि फिर वो हृदय से अच्छे नहीं है, इसलिए जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहते हैं। अगर हृदय से अच्छे हैं तो मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, दोनों में से एक होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने एक किताब लिखी, Why Bad Things Happen to Good People, मतलब अच्छे लोगों के साथ में बुरी चीजें क्यों होती हैं। और उन्होंने ये एक निष्कर्ष उनका उस किताब में पेश किया। तो या तो पहली बात, भगवान सर्वज्ञ नहीं है, उनको सब कुछ नहीं मालूम, इसलिए उन्हें यह नहीं मालूम कि मेरे बच्चे के साथ में क्या हो रहा है, पूरी जानकारी नहीं है। अगर सर्वज्ञ हैं तो शायद वो सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि हैं तो बड़े अच्छे आदमी, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्वशक्तिमान नहीं है। और एक बात, हो सकता है कि सब कुछ होते हुए भी वो अच्छे नहीं है स्वभाव के। तो इस तरह से अपने मनगढ़ंत ढंग से उन्होंने एक थ्योरी बनाई और इससे किताब लिखा, और किताब के बहुत सारे कॉपीज बिक गए, विश्व भर में लोग पढ़ने लगे। तो देखिए, ऐसे तथाकथित भगवान के प्रतिनिधि इनको भगवान में श्रद्धा नहीं होती है। तो ऐसे मनमाने ढंग से भगवान के बारे में कोई ना कोई मत प्रस्तुत करते हैं समाज में और लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो खैर, वो नहीं जानते थे कि कर्म क्या चीज होती है, पुनर्जन्म क्या है, पूर्व जन्म क्या है, कर्म के सिद्धांत क्या होते हैं। तो अज्ञान में आकर उन्होंने ऐसे सब चीजें लिखी। तो खैर, कलयुग में ये समय ज्यादा दूर नहीं है जब वास्तव में सभी बच्चों को ऐसा होने वाला है। अभी तो ये एक केस हुआ कि एक 12 साल का बच्चा 90 साल के आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा तो बहुत बुरी दशा होने वाली है। और वास्तव में कलयुग श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में भी ये वर्णन आता है कि कलयुग की दशा क्या होने वाली है। और जो 12वां स्कंध पढ़ना चाहते हैं या जो इसमें ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 12वां स्कंध पढ़ सकते हैं। इसमें एक पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि कलयुग में आगे चलकर क्या होगा। वैसे भी पहले स्कंध में बता ही गया है, प्रायणाल पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदासुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः। कलयुग में प्राय लोगों की आयु बहुत कम होगी, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य, कि कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी। कलौ अस्मिन् युगे जनाः, कि इस कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी। मंदाः सुमंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रुताः, कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होगी, बहुत आलसी होंगे, गलत मार्गदर्शन उनको मिलता रहेगा और उनका भाग्य बड़ा बुरा रहेगा और ऐसे दुख के मारे तड़पते रहेंगे। तो ऐसे वर्णन आता है कलयुग का। लेकिन सत्ययुग में ऐसा नहीं हुआ करता था। सत्ययुग में प्राय ये स्वर्ग के समान ये पृथ्वीलोक हुआ करता था। पृथ्वीलोक में और स्वर्ग लोक में ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता था सत्ययुग में। और ऊपर के लोकों के निवासी और पृथ्वीलोक के निवासी, इनमें एक आना जाना काफी रहता था। और इस तरह से सत्ययुग में यहां एक स्वर्गीय वातावरण था। लोगों की उम्र भी इतनी ज्यादा थी, 1,00,000 वर्ष, जैसे यहां देख रहे हैं ध्रुव महाराज भी सत्ययुग में रहा करते थे, इसलिए उनकी जीवन की अवधि भी 1,00,000 साल थी। लेकिन जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं तो सारे अच्छे गुण क्षीण होने लगते हैं, जैसे कि दया, क्षमा, सहनशीलता, बुद्धि, शारीरिक बल, धार्मिकता, ज्ञान, स्मृति शक्ति, सौंदर्य, शिक्षण इत्यादि, ये सारे चीजों का घटन धीरे 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 से होने लगेगा। अब सत्ययुग की बात तो दूर है, केवल कलयुग में ही हम देख रहे हैं कि केवल 50-100 सालों में ही कितना फर्क पड़ते आ रहा है। और अगर हम कलयुग की शुरुआत से तुलना करें आजकल के काल को, तो बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पहले तो सारे विद्यार्थी श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर मतलब जो एक बार बच्चे सुनते थे अपने गुरुकुल में गुरु से, तो उसको याद रखते थे एक बार सुनने से ही। और ऐसे बार बार जो पाठ सिखाए जाते थे उनको, बस थोड़े सालों से सिखाने के बाद में सारे वेदों में सारे शास्त्रों में निपुण होते थे। आजकल हम एक ग्रंथ भगवत गीता श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं, फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते, याद नहीं रख सकते। 700 श्लोक की गीता भी पढ़ पढ़ कर हमें नींद आती है, या तो पढ़ने में रुचि नहीं लगती या श्लोक याद नहीं रखते हैं। कितनी कठिनाई होती है एक छोटे से 700 श्लोक वाले शास्त्र के लिए। लेकिन उस काल में बच्चों को सारे शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और जैसे जैसे बच्चे की रुचि होती थी वैसे वैसे उनको विशेष शास्त्रों का भी अध्ययन कराया जाता था। जैसे अगर कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का था तो उसको उन शास्त्रों के बारे में ज्यादा ज्ञान दिया जाता था। अगर कोई क्षत्रिय प्रवृत्ति का था तो उसको उन शास्त्रों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था। सामान्य जो है शास्त्र सबको सिखाए जाते थे, लेकिन विशेष शास्त्र भी अलग अलग प्रवृत्ति के अनुसार लोगों को सिखाए जाते थे। तो इस तरह से बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी। आपको याद होगा एक दो महीने पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के आश्रम में कौन सी कलाएं सीखी। कितनी कलाएं सीखी आपको मालूम है? 64 कलाएं सीखी। सब सारी चीजें, छोटे छोटे चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें। ऐसा ही नहीं कि केवल संस्कृत उन्होंने सीखा या केवल शास्त्र सीखे कि आध्यात्मिक विषय के ऊपर नहीं, भौतिक विषयों के ऊपर भी उनको ज्ञान मिलता था और हर छोटे छोटे भौतिक चीज के ऊपर भी ज्ञान मिलता था उनको। जैसे कि कैसे संगीत के बारे में या फिर कपड़ों के बारे में, कपड़ों की सिलाई कैसे है, कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी कैसी है, हर एक चीज के बारे में ज्ञान हुआ करता था। इस तरह से हम देखते हैं कि सारे सत्ययुग के समय, द्वापर युग के समय, त्रेता युग के समय लोगों का शिक्षण जो हुआ करता था वो बहुत ही उच्च श्रेणी का हुआ करता था, क्योंकि लोगों की बुद्धि भी वैसे ही हुआ करती थी। लेकिन आजकल लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि केवल अभी 1, 2, 5, 10, 15 सालों में ही कितनी जल्दी से आने वाली पीढ़ियां जो हैं कैसे अभी गलत मार्ग पर जाने लगी हैं, कैसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। आध्यात्म विषय के दृष्टि से देखा जाए तो ये जो घटन हो रहा है, जो अभी पिछले 10-50 सालों में हुआ है, वो शायद 1000 साल में नहीं हुआ होगा। अभी केवल ये 50 साल में जो नुकसान हुआ है हमारे मनुष्य समाज का, शायद पिछले 1000 सालों में भी नहीं हुआ होगा। क्यों? ये केवल हमारे तकनीकी ज्ञान, विज्ञान के बल से है। सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारे विज्ञान से हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तव में हमारे विज्ञान के बल से लोगों की चेतना बिल्कुल दूषित हो चुकी है। लोग अश्रद्धालु बन गए हैं, अधार्मिक बन गए हैं और इस तरह से सारे समाज का पतन हो रहा है। आजकल लोग विज्ञान के नाम पर भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो फिर ऐसे विज्ञान से अगर हमें कोई लाभ भी हो तो ये लाभ का क्या फायदा है, ये लाभ की क्या कीमत है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले जमाने में ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जमाने में लोग शास्त्रों के आधार पर ही राज्य चलाते थे, शास्त्रों के आधार से अपने जीवन यापन करते थे, हर छोटी चीज के लिए शास्त्रों का रेफरेंस देते थे कि शास्त्रों में क्या लिखा है, चाहे वो अपने सामाजिक व्यवहार में हो, अपने पारिवारिक व्यवहार में हो, राज्य को चलाने में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, हर एक क्षेत्र के लिए शास्त्र हुआ करते थे। यहां तक कि धनुर्विद्या के लिए भी शास्त्र हुआ करते थे। तो इस तरह से सारे वेद जो हैं ये पूर्ण माने जाते हैं, संपूर्ण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम विवत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद भागवत का दूसरा ही श्लोक है कि ये वेद हैं, इनको निगम कहा गया है। ये निगम शब्द का मतलब आपको मालूम है क्या है? निगम शब्द का मतलब, निगम क्या होता है? हाँ, क्या? कॉरपोरेशन। लेकिन इस शब्द कहां से आता है? निगम के दो शब्द हो सकते हैं। एक मतलब उगम स्थान, उगम स्थान जहां से सब चीज उत्पन्न होती है, और दूसरा अर्थ भी ये होता है, नी, नी मतलब नीचे, गम मतलब जाना, जो सो ऊपर से नीचे जो आता है उसको भी निगम कहते हैं। यह है शास्त्र। मतलब ये श्रीमद् भागवत जो है ना, इसको क्या कहते हैं? निगम कल्पतरुर गलितम फलम। कल्पतरु मतलब क्या होता है? हाँ, मन की सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। क्या ये भौतिक संसार में ऐसे वृक्ष में दिखाई पड़ता है? नहीं, यहां भौतिक संसार में कोई कल्प वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष कहां होते हैं? गोलोक में, भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में होते हैं। तो ऐसे कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और ये श्रीमद् भागवत जो है, यह वेद जो है, ये वेद कल्पतरु के समान है जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और उनमें अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, और इन फलों का जो गलितम फलम, जो सबसे पका हुआ मीठा फल है, वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत। तो ये वेद कल्प वृक्ष है, इसमें अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। अब देखिए, ये भौतिक संसार में क्या आपने कोई ऐसे वृक्ष देखा है जिसमें अलग अलग प्रकार के फल मिल रहे हों? आम के पेड़ में आपको कौन से फल मिलेंगे? केवल आम के मिलेंगे, या कभी कभी बीच बीच में सेब भी मिल जाएगा, चीकू भी मिल जाएगा? केवल आम। चीकू के पेड़ में आपको क्या मिलेंगे? केवल चीकू? एक दो बीच बीच में आम भी नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये भौतिक संसार के पेड़ जो होते हैं, वो एक ही प्रकार के फल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष जो होते हैं वो नाना प्रकार के फल देते हैं। उसी तरह से ये वेद शास्त्र जो है, ये कल्पतरु है, नाना प्रकार के फल देते हैं ये वेद। जिस क्षेत्र में आपको रुचि है, उस क्षेत्र में उस प्रकार का फल देते हैं। आपको धनुर्विद्या की का ज्ञान चाहिए, धनुर्विद्या चाहिए, तो यहां एक शास्त्र है, एक प्रकार का फल मिलेगा आपको। आपको संगीत विद्या चाहिए, तो वहां अलग प्रकार का फल आपको मिलेगा। आपको कर्म कांड चाहिए, भोग करना है, तो फिर आपको अलग प्रकार का फल मिलेगा। ज्ञान कांड, आपको ज्ञान से भगवान की उपासना करनी है, ज्ञान मार्ग से, और एक प्रकार का फल आएगा। आपको कृषि के ऊपर ज्ञान चाहिए, तो कृषि के ऊपर भी है। आपको शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए इलाज चाहिए, आयुर्वेद, और एक प्रकार का फल है। आपको वृक्ष और पशुओं को की बीमारी ठीक करने के लिए ज्ञान चाहिए, वृक्ष आयुर्वेद, मृग आयुर्वेद है। इस तरह से अलग अलग फल हैं ये वेद में, इतने सारे फल हैं, अनगिनत फल हैं इसमें। और इनका सबसे मीठा फल, सबसे परिपक्व फल कैसे, कौन सा है? श्रीमद् भागवत। तो वैसे क्या होता है, जो फल पकने के बाद जो निकाला जाता है, तो अच्छी तरह से उसका स्वाद बन जाता है। नहीं, आजकल क्या होता है, पकने के पहले ही फल को निकालते हैं और कृत्रिम रूप से उसको पकाते हैं, घास में वगैरह रखकर उसको पकाते हैं, तो फिर क्या होता है, स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। जब फल अच्छी तरह से पेड़ के ऊपर ही पक जाता है और फिर उस सही समय पर उसको निकाला जाता है, तो फिर वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये पका हुआ फल है, चखने के लिए तैयार है। वो जो अलग अलग फल है, वो शायद थोड़े कच्चे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे अलग अलग स्वाद के होते हैं। लेकिन जब कोई फल पेड़ के ऊपर पक जाता है, तो क्या हो जाता है, अगर कोई उसको निकालता नहीं है, तो क्या होता है? नहीं, नीचे गिर जाता है। गिर जाकर क्या होता है, अगर पका हुआ आम है, रसमय आम नीचे गिर जाए अपने आप पकने के बाद में, तो क्या होगा, फूट जाएगा, फूट कर रस इधर उधर हो जाएगा। तो ये वेद शास्त्र जो है, इनके जो फल होते हैं, और खास करके ये सबसे मीठा फल श्रीमद् भागवत, जो पका हुआ फल है, वो जब नीचे आते हैं निगम, तो कैसे आते हैं, कि नीचे गिर कर फटाक गिर के सब रस बाहर निकलता है? निगम का मतलब है धीरे 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 नीचे आते हैं। जैसे एक आदमी ऊपर हो वृक्ष के ऊपर, और वो फल निकाल रहा है, फल निकाल कर नीचे और कोई आदमी को दे रहा है जो वृक्ष पे और थोड़े नीचे खड़ा हुआ है, तो वो आदमी उस फल को लेकर और थोड़ा नीचे देता है, और वहां भी और एक आदमी खड़ा हुआ है, वो फल को लेता है। इस तरह से हाथों से एक से नीचे 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 जाते, नीचे जमीन तक पहुंच जाता है, ताकि जब वहां वृक्ष रहे, फल नीचे आ पहुंचे, तो फल बिल्कुल अच्छी अवस्था में हो, फूटा हुआ नहीं हो। तो इसका यह निगम का मतलब है। तो ये शास्त्र ऐसे दिए जाते हैं नीचे 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 नीचे। तो इस तरह से इस सारे शास्त्र में अलग अलग क्षेत्रों का वर्णन है और सारे अपने अपने संप्रदाय परंपरा हैं। संगीत विद्या की भी परंपरा होती है, धनुर्विद्या की परंपरा होती है, आयुर्वेद की परंपरा होती है, वैदिक ज्ञान की परंपरा होती है। और इस तरह से ये ज्ञान सारे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के ज्ञान वगैरह होते हैं और लोगों को ये अलग अलग ज्ञान के क्षेत्रों में शिक्षण दिया जाता था और लोग ऑलराउंडर हुआ करते थे। बताया जाता है कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे, किसी के घर में जाते थे, वो ऐसे ब्राह्मण ऑलराउंडर थे कि अगर कोई किसी के घर में कोई अनुष्ठान करना हो, किसी का विवाह संस्कार हो, लड़के बच्चे का मुंडन संस्कार हो, या किसी के श्राद्ध करना हो, या और कोई शुभ अवसर हो, तो ब्राह्मण को बुलाते थे। सारे क्रियाएं विधि विधान सब होते थे, ब्राह्मण किया करते थे। साथ साथ ब्राह्मण ज्योतिष भी हुआ करते थे। तो जो भी ज्ञान भविष्यवाणी वगैरह करनी होती थी, बच्चे का हाथ देकर बताना, बच्चे का जो हॉरोस्कोप देकर बताना, वो भी करते थे। और साथ साथ कोई परिवार में बीमार हो तो आयुर्वेद के अनुसार वो दवाई भी, जड़ी बूटी भी दे देते थे। इस तरह से ब्राह्मण 3-in-1 हुआ करते थे, ज्योतिष भी थे, वैद्य भी और पुरोहित भी थे। तो इस तरह से सारे ऑलराउंडर हुआ करते थे। तो लोगों को उस समय सारे क्षेत्रों का ज्ञान होना आवश्यक होता था और उतना काफी रहता था। वो अपने जिम्मेदारी अच्छी तरह से देख सकते थे और सब लोगों को ठीक करते थे, संतुष्ट रहते थे लोग उस समय। लेकिन आजकल क्या है कि एक आदमी एक क्षेत्र को भी अच्छी तरह से नहीं जान सकता। जैसे मान लीजिए अभी चिकित्सा का क्षेत्र, या वैद्य जो मेडिसिन, जो डॉक्टर लोग बनते हैं आजकल, जो MBBS बनता है वो तो थोड़ा कुछ जानता है, इधर उधर ज्यादा नहीं जान सकता। अगर कुमारी ज्यादा होती है तो कहता है स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं जिसने और एक डिग्री की हो, MD MS कुछ किया हो, और उसको भी पूरा ज्ञान नहीं मालूम होता है। कभी कभी सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजता है जो उससे भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो, और इसके बाद में भी वो नहीं जानते कि क्या करना है। आखिर में कहते हैं कि यही विज्ञान होगा, ये हमारे विज्ञान की दृष्टि से ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। जितने ज्यादा स्पेशलाइज होते जाते हैं उतने ज्यादा कम क्षेत्र में उनका ज्ञान रहता है। ऐसी अवस्था है कि कोई सुपर स्पेशलाइज आदमी को अब साधारण बीमारी के बारे में पूछे तो वो कहेगा मुझे याद नहीं है, साधारण खांसी के लिए आप दवाई देंगे वो मालूम नहीं, क्यों, इतना सुपर स्पेशलाइज में चला गया है वो दिमाग के अंदर कुछ एक पार्ट है उसके बारे में शायद वो स्पेशलाइज कर रहा हो, लेकिन खांसी हो रही है बेचारा वो तड़प रहा, उसके बारे में नहीं होगा उसको, ऐसी परिस्थिति हो गई है। हमारे एक भक्त कल बता रहे थे कि उनकी 6 महीने की बच्ची कन्या बहुत बीमार हो गई। लोग कह रहे थे कि मस्तिष्क में कोई पानी आ गया है, और सारे स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जगह जगह दिखाए एलोपैथी वालों को, सब उन्होंने तपस्या की, हजारों हजार रुपए खर्च करके ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, ये स्कैन करो वो स्कैन करो, बहुत भगाया इधर उधर, और अंत में क्या कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे है वैसे भी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और बाकी एलोपैथ ने, दूसरे चिकित्सा थे जो एलोपैथी फॉलो नहीं करते, उन्होंने कहा 15 दिन में ठीक कर दूंगा। उन्होंने चैलेंज किया कि भले दवाई रखो पानी सूख जाएगा, और उन्होंने लिया और वाकई 15 दिन में पूरा का पूरा ठीक हो गया। और वो कोई साधारण आदमी था, कोई इतना कुछ बड़ा ये नहीं था, डॉक्टर नहीं था, एलोपैथी वाला नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े स्पेशलिटीज स्पेशलिस्ट होने के बाद, इतने बड़े बड़े मशीन देख के ही आदमी घबरा जाता है कि इसके अंदर हमको घुसाने वाले हैं, वो सिर के ऊपर वो कैमरा डालेंगे और अंदर हमको ले जाएंगे, बड़े भयानक उग्र कर्म से उत्पन्न होने वाले ऐसे ऐसे चिकित्सा के यंत्र होते हैं। जैसे दिमाग को का फोटो लेना होता है तो किसी ऐसे में जाते हैं, फिर आपका यहां तक उसके अंदर जाते हैं, कोई आदमी घबरा भी जाए, बहुत लोग घबरा जाते हैं उसके अंदर जाने के लिए। अगर मशीन बंद हो जाए, खुले नहीं, तो हमारा सर वहीं अटक के पड़ेगा, क्या होगा? लोगों को हृदय में बहुत परेशानी होती है। ऐसे बड़े बड़े यंत्र, करोड़ों करोड़ों रुपए के यंत्र हम बनाते हैं, और इतने साल लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है। जब सुपर स्पेशलिटी हो जाता है, आदमी की उम्र 30 तक हो जाती है, आधा जीवन तो बीत गया उसका, तो फिर आगे क्या? और इसके बाद में भी अगर मान लीजिए कि इस आदमी ठीक हो जाता तो दूसरी बात है, लेकिन आदमी को भी ठीक नहीं कर सकते। उसके हजारों लाखों रुपए खर्च कराते हैं, अंत में बोलते हैं कि हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक साधारण व्यक्ति जो छोटी मोटी दवाई देकर 15 दिन में ठीक करा दिया, तो देखिए तो क्या फायदा? इतना सब ज्ञान, इतने बड़े बड़े मशीन्स, जहां पुराने जमाने में ब्राह्मण हुआ करते थे, पुरोहित का काम करते थे, ज्योतिष का काम करते थे, वैद्य का काम करते थे, फैमिली काउंसलर भी थे, परेशानी होती तो वो भी मार्गदर्शन करते थे, घर में झगड़ा होते वो भी आके थोड़ा कुछ सुलझाते, सब कुछ मल्टीपर्पस आदमी था वो ब्राह्मण। आजकल देखिए हर एक क्षेत्र में स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी कर करके आजकल ऐसा हो गया है कि हम किसी भी एक वस्तु के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं जानते। पहले जमाने में क्या हुआ था, होता था, सब चीजों के बारे में काफी कुछ जानते थे। आजकल वो छोटी सी चीज के बारे में भी कुछ नहीं जानते, ऐसी अवस्था हो गई। क्योंकि भगवान की सृष्टि ऐसे बनाई है, ऐसे मोहित कर देती है हमको, कि जितना हम ज्यादा गहराई में जाएंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा मोहित और भ्रमित कर देती है, हम समझ नहीं पाएंगे। हमारे भौतिक विज्ञान से इस सृष्टि को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। एक अणु, एटम क्या है, हमारे वैज्ञानिक बहुत तपस्या करके, संशोधन करके ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि अणु क्या चीज है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक कभी भी जान नहीं पाएंगे कि अणु क्या चीज है। हर दिन उनकी बात बदलते रहती है कि अणु में क्या है, हर दिन अलग अलग उनके संशोधन से कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है कि अणु में ये और भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और ये है वो है, हर दिन नई बात, कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए चाहिए कि केवल शास्त्रों के आधार से हम रहें, शास्त्रों में जितना ज्ञान हमें दिया है उसको स्वीकार करें, और अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करते रहें, जीवन सुखी रहेगा। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन इतना कठिन हो गया है। और जैसे जीवन कठिन हो जाता है, जैसे जैसे भगवान के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे जैसे पाप बढ़ते जाते हैं, वैसे जीवन की अवधि कम हो जाती है। इसलिए आजकल के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है कि 36,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष तो कौन जी सकता है, जैसे ध्रुव महाराज जी रहे थे। लेकिन वहां तो कोई नॉर्मल बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। अगर सत्ययुग में किसी को बोला जाए कि कलयुग के समय लोगों की जीवन की अवधि 50 साल, 60 साल होगी, तो वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे अभी आज भी हमें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कलयुग में आगे चल के लोगों के जीवन की अवधि 30 साल की हो जाएगी। लगता है ना सबको आश्चर्य, कैसे होगा कि 30 साल में सब बूढ़े हो जाएंगे? तो सोचे कि सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष में और 100 वर्ष में कितना अंतर है। अभी 60-70 वर्ष से 30 वर्ष का हमें आश्चर्य होता है कि इतना फर्क होगा, तो 1,00,000 वर्ष में और 100 वर्ष में, तो देखिए कितना अंतर है। तो इस तरह से सत्ययुग का समय इतना अच्छा था, इतना शुद्ध था, वातावरण इतना पवित्र था कि लोग इतने लंबे समय तक जी सकते थे। लेकिन आजकल क्योंकि हम धर्महीन हो गए हैं, भगवान के नियमों के खिलाफ हम जा रहे हैं, इसलिए हमारी ये बुरी परिस्थिति है। अगर हम इस कलयुग में भी अच्छे ढंग से भगवान की भक्ति करेंगे, तो भले हमारे जीवन की अवधि 1,00,000 साल तक न हो जाए, लेकिन जो सुख शांति वहां सत्ययुग में लोग अनुभव किया करते थे, वही सुख शांति हमारे समाज में भी आ सकती है आज भी। और इसलिए भविष्यवाणी हुई है कि चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन जैसे फैलेगा, ये 10,000 साल इसको स्वर्ण युग माना जाएगा, कलयुग के भीतर स्वर्ण युग। वैसे आप जानते हैं कि सत्ययुग को कौन सा युग बोलते हैं, स्वर्ण युग। और त्रेता युग को चांदी का युग, और जो द्वापर युग है उसको कॉपर, कॉपर एज। कॉपर को क्या बोलते हैं? हाँ, तांबा, तांबे का युग है। और ये कलयुग लोहे का युग है। लेकिन इस लोहे के युग में भी 10,000 वर्ष स्वर्ण युग, सोने का युग होगा। सोने का मतलब ऐसे ऐसे सोने का नहीं, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग होगा, जिसमें सत्युग के बराबर ही परिस्थिति होगी लोगों की। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि हरिनाम का संकीर्तन सब जगह होगा। इसलिए तो हमें देखना है कि हमें क्या स्वर्ण युग में रहना है कि नहीं रहना है। स्वर्ण युग होकर रहना है, होकर ही रहेगा ये आंदोलन, फैल कर ही रहेगा। केवल हमें चयन करना है कि हमें इसमें शामिल होना है कि नहीं होना है। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी ठीक निकलेगी, केवल हम इसमें शामिल होंगे नहीं लोंगे या नहीं होंगे, इसका इस महाप्रभु की कृपा के पात्र हम होंगे नहीं होंगे, वो निर्णय लेना हमारे हाथ में है। तो सब मिलकर हमें अच्छी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस स्वर्ण युग को जल्दी से जल्दी यह लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो गुरु लोग जो हम बोलते हैं वो पहले वैकुंठ धाम ही है नी। इसी वास्ते वो भगवान विष्णु ने उनको जगह दे दी कि वैकुंठ धाम है और इधर आप इधर रह जाइए, तो इसी वास्ते वो धाम उधर भी वो वैकुंठ धाम ही में अभी रहेंगे ना। ध्रुव तारा यही वैकुंठ धाम,
वो भौम वैकुंठ में नहीं रहेंगे। वो जो वैकुंठ धाम इस भौतिक संसार के परे है उसमें गए हैं। यहाँ भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ है, ये ध्रुव तारा श्वेत द्वीप का हिस्सा है। जैसे आगे पढ़ेंगे, पीछे आगे ही होगा शायद, तो उसमें वर्णन आएगा जैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस ध्रुव लोक में नहीं है वो, अभी चले गए वापस वैकुंठ में।
आपने कहा था कि पोप ने अपने बच्चे के बारे में ऐसा होने के बाद भरोसा,
पोप नहीं कोई पादरी था उनका, जू जू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में नहीं, जू धर्म में।
तो उन्होंने भगवान के बारे में अलग अलग यानी आपके मत प्रदर्शित किए और वो सब लोग पढ़ते गए। उसी मुताबिक एक अनुभव आया कि वो बोलते, एक आदमी ने पूछा कि सच में जब यीशु क्रिस्त भगवान थे तो उनको सूली पर चढ़ाने के बाद, किले मारने के बाद भी उन्होंने आपका यानी उनको शासन क्यों नहीं किया? ये सच है क्या? भगवान रहते थे हुए भी सर्व सामान्य आदमी?
यीशु क्रिस्त तो भगवान नहीं है, तो भगवान के
दूत
पुत्र है। हम सब भगवान के पुत्र हैं। हरिदास ठाकुर भी तो भगवान के पुत्र थे, प्रहलाद भी तो भगवान के पुत्र थे, उनको भी तो कष्ट दिया।
उनकी व्यू से वो भगवान मानते हैं ना?
नहीं नहीं, भगवान नहीं मानते, सन ऑफ गॉड मानते हैं भगवान, सन ऑफ गॉड, भगवान नहीं मानते उनको। नहीं है जिसमें भक्तों को परेशान नहीं किया गया हो किसी भी धर्म।